Good evening to all. The next session, Education Beyond Degrees. To start this session, I'd like to call on the stage our today's distinguished guest, Professor Dr. K.C. Poria, Vice Chancellor of Hemchandra North Gujarat University, Patan. So I'd like to welcome our distinguished guest with a round of applause. Our speaker today, P.K. Chitraben, Faculty, Education Wing, Jaipur. So I'd like to welcome Chitra Didi. So as we begin with this session, I love to call Brahma Kumari's sister to welcome our guest with a bouquet and badges. हम अपने गेस्ट का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के सेशन में एजुकेशन बियॉन्ड डिग्रीज Thank you. So to begin with the session, I'd like to first call BK Sister Chitra, who's Faculty of Education Wing, Jaipur, and she is also a faculty at JECRC College. She is associated with Brahma Kumaris since 19 years and she is a counselor of Rajyoga Thought Laboratory at JECRC. She has also conducted various sessions on Rajyoga Meditation Course and Value-Based Teachings at various cities in India. So, I'd like to call Chitra Ben to express her views on today's topic, Education Beyond Degrees.
Om Shanti. Om Shanti. Good evening. Hum sabke students bhi aise hi good evening karte hain hame. Good evening. आई रिक्वेस्ट जो लोग पीछे बैठे हैं वो भी थोड़ा सा आगे आकर बैठेंगे तो मुझे और आपको दोनों को और ज्यादा अच्छा लगेगा. आज हम बात करने वाले हैं जो इस पूरी कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है ना, लर्निंग बियॉन्ड डिग्रीज, एजुकेशन बियॉन्ड डिग्रीज, है ना. और हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो हमारे पास में बहुत सारी डिग्रीज, बहुत सारी क्वालिफिकेशंस तो है ही है ना. ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास में कोई डिग्री नहीं है एंड स्टिल दे आर इन एजुकेशन सिस्टम. एटलीस्ट और किसी भी सिस्टम में हो सकते हैं, पर एजुकेशन सिस्टम में तो ऐसा मुश्किल है कि डिग्री नहीं हो और हम वहां पर हैं. लेकिन फिर भी इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक रखा गया है एजुकेशन बियॉन्ड डिग्रीज, और अभी का हमारा सेशन भी है लर्निंग बियॉन्ड डिग्रीज. तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें इस डिग्री गेनिंग के प्रोसेस में कहीं ना कहीं छूट गई थी, उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे. बात करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कई बार हम सभी के सामने ऐसे एग्जांपल्स हमारे अपने ही स्टूडेंट्स के भी होंगे और आसपास के बहुत सारे लोगों के हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं. एक बच्चा होता है जो बहुत ब्रिलियंट होता है पढ़ाई के अंदर, वो पढ़ता भी बहुत अच्छे से है, फिर उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाते हैं, टॉप भी कर लेता है, फिर उसका एडमिशन भी किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में, IIT IIMs में हो जाता है, फिर वो MBA MTech कुछ और अच्छा कर लेता है, किसी एक बहुत ही अच्छी MNC में उसका प्लेसमेंट भी हो जाता है। मींस लाइफ में बहुत एफर्ट्स भी वो करता है, पेरेंट्स भी एफर्ट्स करते हैं, एंड सब कुछ करते करते वो जिसको हम कहते हैं हमारी भाषा में सक्सेस, वो उस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां उसका एक अच्छा प्लेसमेंट है, जहां अच्छा पैकेज है, घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, परिवार भी अब बस चुका है उसका। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर कोई काउंसलर्स होंगे तो उनके पास में ऐसे केसेस आते हैं कि सब कुछ है, एवरीथिंग इज ऑल सेट, बट माई माइंड सेट इज नॉट राइट, आई एम नॉट स्टिल फीलिंग हैप्पी, मेरे रिलेशंस में कुछ गड़बड़ चल रही है, मुझे रात को नींद नहीं आती है, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, या फिर एक कम एज में ही, यंग एज में ही थायराइड, BP, हार्ट अटैक जैसी कई सारी बीमारियां साथ में आ जाती है। तो इसका मतलब है इस, और ये एक का नहीं, ऐसे एग्जाम्पल हम सबके सामने एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं पता अपने आसपास में। इसका मतलब है हम जो एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत अच्छी डिग्रीज मिल रही है, जिससे हमें बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है, उसमें कुछ तो चूक हो गई है कि जिस कारण फिजिकली फाइनेंशियली एवरीथिंग इज ऑल राइट बट स्टिल समथिंग इज मिसिंग, और वो जो मिसिंग है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू द मनी और द लग्जरीज विच दैट पर्सन इज गेटिंग इन द लाइफ। वो सब कुछ है लेकिन वो सब कुछ कैसा लग रहा है अभी, धन दौलत मकान फैमिली रिश्तों में मधुरता नहीं है, तो वो सब कुछ कैसा लग रहा है होते हुए भी, जैसे कि उसके साथ में मजा ही नहीं आ रहा है, उसको लगता है ये सब नहीं होता पर थोड़ी सी देर का सुकून मिल जाता तो अच्छा लगता मुझे, है ना, ये सब सुविधाएं थोड़ी सी कम हो जाती पर मेरे को शांति मिलती, मेरे को गहरी नींद आती, मैं सुबह उठूं तो एकदम फ्रेश उठूं, कोई शरीर के अंदर स्ट्रेस नहीं हो, मन के अंदर स्ट्रेस नहीं हो। तो इस बात पर हमने विचार किया जब ये कॉन्फ्रेंस का डिस्कशन चल रहा था, इस टॉपिक के बारे में बात हो रही थी, तो वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारी हमारी एजुकेशन को और हमारी लाइफ को कंप्लीट करती है। तो उसमें जो पहली बात हमें निकल कर आई, समझ में आई, वो बात आती है कि हमने बचपन से ये तो सब कुछ सीखा कि बच्चे को कैसे ग्रो करना है, उसको हमने सबने उसको बड़ा किया, अच्छे से खिलाया, अच्छा पहनाया, आजकल तो ऑर्गेनिक फूड की बात हो रही है ना, हाई क्वालिटी फूड हम खिला रहे हैं, अच्छे ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड स्कूल, ब्रांडेड फुटवेयर, सब कुछ ब्रांडेड है, पर उसके माइंडसेट को कैसे नर्चर करना था हमको, उस पर कुछ काम नहीं हो पाया। और वो तब हो पाता जब हम उसके साथ उस बच्चे को ये भी बता पाते कि हु यू आर एक्चुअली, जिस पर्सन की अभी हम बात कर रहे थे कि उसके लाइफ में सब कुछ था बट ही वॉज डल, ही वॉज डिप्रेस्ड, जब वो किसी ऐसे सेशन में आके बैठा जहां उससे एक प्रश्न पूछा गया कि आप कौन है इसका जवाब दीजिए, पर आपको उसमें आपकी डिग्री, डेजिग्नेशन या आपकी और कोई लेबल जो आपको मिला है बाहर से उसके बारे में नहीं बात करनी है, नाउ प्लीज रिप्लाई हु यू आर, देन ही वॉज ब्लैंक, क्योंकि हमारी आइडेंटिटीज तो सारी कौन सी है, नाम बाहर से आ गया, डिग्री बाहर से आ गई, है ना, रिलेशन बाहर से आ गया, रिलीजन जहां पैदा हो गए वो आ गया, एंड वी थिंक ये ही मैं हूं, है ना, एंड हम उस मैं को ही सजाने में अपना पूरा जीवन लगाए जा रहे हैं, उस मैं को ही संतुष्ट करने में, जो कि सिर्फ एक एक्सटर्नल पार्ट ऑफ दी पर्सनैलिटी है, पर जो इंटरनल पार्ट ऑफ दी पर्सनैलिटी है, द रियल आई, जिसके बारे में कल सुबह और कल रात के सेशंस में हमने जाना था, क्या जाना था, हु इज द रियल आई, हम कौन है, सोल है। तो हमने आत्मा के बारे में जाना, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ टूडे, क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट के कोर्सेज बहुत सारे हो रहे हैं, बट हु इज द रियल सेल्फ, दैट अवेयरनेस इज मिसिंग। वो रियल सेल्फ एक इटर्नल एंटिटी है, वो जो आत्मा है उसमें ही सोचने की शक्ति है, उसी के अंदर निर्णय लेने की शक्ति है, और वो आत्मा ही अपने संस्कारों का निर्माण करती है। दिस द मोस्ट पावरफुल नॉलेज इज मिसिंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम, एंड दैट इज वाई हमने बच्चे को ये तो सिखा दिया कि चोट लग गई है या चेहरे पे कोई दाग लग गया है तो कैसे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उसको ठीक कराना है, पर मन में अगर रोना आया था, गुस्सा आया था, चिड़चिड़ापन हुआ था, तो उसको मैनेज कैसे करना है, दिस वॉज नेवर टॉट इन एनी एजुकेशन सिस्टम. इसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि आखिर भी परमात्मा कौन है, कौन है वो शक्ति जो मेरे मन को भरपूर कर सकती है. शायद कहीं एजुकेशन सिस्टम ने भगवान को, परमात्मा को रिलीजियस आइडेंटिटी समझ लिया और अपने एजुकेशन सिस्टम को सेक्युलर बताते हुए वहां से इन सब बातों को निकाल दिया गया. तो वो फिर वो स्टूडेंट जब कभी लड़खड़ाया, जब कुछ हुआ, तो उसने बाहर बाहर के सपोर्ट सिस्टम ढूंढे, पर उसको ये नहीं समझ में आया कि मुझे उसके साथ कनेक्ट होके अपनी इनर बीइंग को चार्ज करना था, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑलमाइटी वॉज मिसिंग इन द एजुकेशन सिस्टम. तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है समय का ज्ञान, है ना. आप कल के सेशन में यहां पर भी जानेंगे द नॉलेज अबाउट द टाइम, द यूनिवर्सल टाइम. दिन और रात की, सीजन्स की, या 2026 की बात नहीं हो रही है, या हिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, पर इस वर्ल्ड साइकिल में क्या चल रहा है. जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी एक AI आ गया है, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, उस शिफ्ट की तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर दिन ग्रो होती जा रही है, क्या उसी तरह से हमारा माइंडसेट भी हर दिन और बेटर और बेटर और बेटर होता जा रहा है, या वो और डल और डल और डल होता जा रहा है. एंड अगर हमारा माइंडसेट और डल होता गया, तो फिर डेफिनेटली जो बात है कि AI सारी दुनिया को ओवर पावर कर लेगा, तो वो सच होगा ही होगा, क्योंकि हम कैसे होते जा रहे हैं, हम मेंटली इमोशनली डिप्राइव्ड एंड डल होते जा रहे हैं. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी अवेयर अबाउट द टाइम, कि मुझे अपने आप को भी अपलिफ्ट करना है, अपने मेंटल स्टेट को भी अपलिफ्ट करना है. चौथी इम्पॉर्टेंट बात होती है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना. हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, या किसी भी उम्र के हों, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, हम कह सकते हैं कि मुझे क्या पता ये ग्लास यहां से छोड़ूंगी तो फूट जाएगा, नीचे गिरेगा, मुझे तो लगा ये ऊपर ही अटक जाएगा, मैंने ऊपर उछाला था. कैन वी से एनीथिंग लाइक दिस? इट साउंड्स वेरी इलॉजिकल, है ना. लेकिन क्यों नहीं हमें कभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सिखाया गया कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हम पाएंगे. दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ. और अगर उस स्टूडेंट को, उस नौजवान को इस बात का पता ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो मुझे ही ये गलत एक दिन भुगतना पड़ेगा, तो वो कुछ भी कर रहा है अपनी अर्निंग्स के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने कॉम्पिटिशन्स में विन करने के लिए, बिकॉज ही और शी इज अनअवेयर अबाउट दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दी एक्शंस दे आर डूइंग. तो जो चौथी इंपॉर्टेंट लर्निंग है हमारी बियॉन्ड दिस डिग्री गेनिंग प्रोसेस इज द नॉलेज ऑफ दी कर्मा फिलोसफी, के मुझे मेरे कर्म ही मेरे पास लौट करके आते हैं. और हम में से कभी भी कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझे क्या पता था, है ना. हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी उम्र के हों, ये नियम सब पे एप्लीकेबल होगा, या हम में से कोई कह सकता है नहीं नहीं मुझे क्या पता, ऐसा भी होता है कि जैसा मैं करूंगी वैसा ही मुझे मिलेगा. वी कैन नेवर से लाइक दिस. सो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह की चीजों को भी हम एजुकेशन सिस्टम में एड ऑन करें. इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमें अपने मन को और अपने तन को स्वस्थ कैसे रखना है. छोटी छोटी टेक्निक्स हमने सिखाई है ना, लेकिन जो टीचर्स बैठे हैं वो सब जानते होंगे कि योगा पीरियड की क्या प्रायोरिटी होती है किसी भी स्कूल या कॉलेज के अंदर, है ना, या स्पोर्ट्स पीरियड की क्या प्रायोरिटी होती है. यस, कहीं से पॉलिसीज आई, नीतियां आई कि हाँ ये सिखाना चाहिए, वो सब पार्ट हो गए, पर प्रायोरिटी उनकी कितनी थी बाकी चीजों के आगे, है ना. और फिर बहुत कमाया, बहुत कमाया, बहुत कमाया, और फिर एक उम्र के बाद वो सारा कहाँ गंवाया, इस शरीर को स्वस्थ रखने में गंवाया, है ना. और वही जो हमने मन की बात की कि मन को हेल्दी कैसे रखना है, अंदर रोने के इमोशंस आ रहे हैं, अंदर चिड़चिड़ेपन के इमोशंस आ रहे हैं, अंदर गुस्सा आ रहा है, किसी से ज्यादा अटैचमेंट हो गया, उन सब सिचुएशंस में कैसे अपने आप को ओवरकम करना है, वो तो हमने किसी भी साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी किसी भी क्लास में सीखा ही नहीं. और जिन्होंने सीखा वो शायद अपने घर के स्कूल्स में सीखा है, अपने पेरेंट्स के पास सीखा है, या किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के सीखा है. और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि डिफरेंस बिटवीन वर्च्यूज एंड वाइसेस, किस चीज को जिंदगी में फॉलो करते हुए आगे चलना है और किस चीज को छोड़ना है, उसकी नॉलेज की भी कहीं ना कहीं कमी रह गई है. कुछ दिन पहले कोई सेशन अटेंड कर रही थी, तो वहां पर एक बहुत ही सीनियर पर्सन थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने एक बात कोट की कि अगर हम आज के इंजीनियर्स को हाईटेक टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं, पर उसके साथ में अगर उनको वैल्यूज नहीं सिखा रहे, तो दे कैन any time become techno-terrorist. Because they have technology, but they are zero in moral values. They can use their technical knowledge in any ways. So that is the important thing, ki virtues kya hai. Aajkal main jab tak padhti thi, shayad mujhe lagta hai hamari last generation hogi jinke school mein ek choti si moral values ki kitab hua karti thi. और उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी आती थी, टेबल मैनर्स आते थे और बड़ों के साथ कैसे डील करना है, छोटों के साथ कैसे डील करना है, और उसके मार्क्स भी होते थे और सब कुछ रटाया भी जाता था, सिखाया भी जाता था. लेकिन आजकल के बच्चों के स्कूल में ऐसी कोई बुक नहीं चलती है, और चलती भी है तो वो एक वही वाली बात है, लीस्ट प्रायोरिटी पर चलती है, जहां पर कि उसको ये सारी चीजें. हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जब बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं कभी ट्रुथफुलनेस पर, कोऑपरेशन पर, ऑनेस्टी पर, तो वो बच्चे इतने अच्छे होते हैं वास्तव में जब उनको इन बातों का पता चलता है. और फिर वो 20-25 दिन बाद जब वापस इंटरेक्शन होता है तब आकर के जवाब देते हैं कि मैम उस दिन आपने बोला था ना ऐसे ऐसे, सर उस दिन आपने बताया था ना ऐसे, फिर उसके बाद ना ऐसा हुआ था वैसा हुआ, पर मैंने सोचा नहीं नहीं मुझे तो सच ही बोलना है, जो भी होगा देखा जाएगा. तब डिफरेंस इज जैसे ही उसको बताया, ही और शी वॉज रेडी टू एक्सेप्ट, पर उसको उस बात का नॉलेज या इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही थी. ऐसे ही अब्यूजिव लैंग्वेज है ना, जो तो हमारे कॉलेजेस में ऐसे कॉमन हो गई है, जैसे तो बिल्कुल है ना, बिल्कुल अलाउड ही 100%, उसके बिना तो पढ़ाई संभव ही नहीं है. आगे भी कुछ है और पीछे भी कुछ तो शब्द लगा होता है अपनी बात के आसपास. लेकिन इस बारे में अवेयरनेस, हाउ मेनी टाइम्स वी आर गिविंग. एंड हम बहुत आसानी से ये बात भी कह देते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे सालों से जब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ काम करके पता चला तो बच्चे बहुत सुनते हैं, बट वी नीड टू कैच देम एट द राइट टाइम एंड इन द राइट वे, so that they could have the ability to digest what we are saying to them. तो और ऐसे ही vices, है ना, virtues की बात है, vices में इतनी सारी चीजें हैं, lust, greed, ego, anger, attachment. आज अगर हम कोर्ट की सारी files उठा के देखें और उसका वो कर ले ना एक बार analysis करें, तो हमें निकल के आएगा कि जितने भी केस वहां filed हैं उनका जो मोटा मोटा रूट कॉज है यही 5 वाइसेस है. कहीं लस्ट की वजह से है, कहीं एंगर की वजह से है, और बाकी जो है वो इन्हीं के फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो जेलसी है, चाहे कंपटीशन है, चाहे कंपैरिजन है. और इसके साथ में एक बहुत अच्छी चीज जो हमने सिखाई पर सिर्फ थैंक यू तक सिखाई. किसी ने कुछ टॉफी दे दी, दीदी को थैंक यू बोल दो, किसी ने हेल्प कर दी, उनको थैंक यू बोल दो, बट दैट शुड कम इन एन एटीट्यूड. जो पहले के लोग एक वर्ड यूज किया करते थे, कृतज्ञ भाव, वो वाली चीज तो हम सभी कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं. एक और नेक्स्ट स्लाइड, एक और एक और इम्पोर्टेंट बात जिस पे कल एक पूरा सेशन भी आपका थॉट्स के ऊपर हुआ है, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, है ना, जैसा हम सोचेंगे हम वैसा बनेंगे. पर हो क्या रहा है, मैं बनना तो कुछ और चाहती हूँ और सोचती मैं कुछ और हूँ, है ना. बनना तो मुझे बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, पर मैं सोचती हूँ नहीं अभी 2 घंटे रेस्ट नहीं किया तो मेरा तो काम ही नहीं चलेगा, अरे 2 घंटे और सो लेते हैं, अरे यहाँ तो ऐसा करना पड़ेगा वहां. मीन्स हम वेज ढूंढने लग जाते हैं अपने थॉट्स की क्वालिटी को डिग्रेड करने के लिए. लेकिन अगर हमें शुरू से ही ये पता हो कि हमारे विचार ही हमारा भाग्य बनाएंगे, जो हमने सुना तो है कि हाई थिंक सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, बट इट वॉज नेवर सिंप्लीफाइड, है ना, फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द एजुकेशन सिस्टम. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिटर्निंग बैक टू दिस सोसाइटी. कुछ दिन पहले एक ऐसे ही ऑडिटोरियम में 400-500 बच्चे बैठे हुए थे, कुछ दिन पहले एक ऐसे ही ऑडिटोरियम में 400-500 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बैठे थे और एक एक्सटर्नल एआई एक्सपर्ट को बुलाया गया था टॉक करने के लिए. एंड उन्होंने बच्चों से जैसे ही अपना इंटरेक्शन शुरू किया, उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि आप सबने कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया है, है ना, व्हाई यू आर हियर इन दिस इंजीनियरिंग कॉलेज. तो मेजॉरिटी बच्चों का एक स्वर में जवाब आता है, फॉर जॉब एंड प्लेसमेंट. किस लिए एडमिशन लिया है, जस्ट फॉर गेटिंग जॉब, गेटिंग प्लेस्ड. कल हमारे साथ में जयंती दीदी थे और उन्होंने एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल भी दिया था, आप सबको याद होगा कि कैसे उन्होंने एक बच्चे से पूछा भारत में कि आपको क्या करना है, तो उसने कितना जल्दी उस वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हुए अपना पर्पस बता दिया कि हाँ हाँ मुझे तो ये करना है. है ना। तो पर्पस क्या है, अगर आज के स्टूडेंट से हम बात करते हैं तो उनका पर्पस क्या है, पैसे कमाने हैं, फिर एक गाड़ी खरीदनी है मुझे सबसे पहले, फिर एक प्लॉट खरीद लेना है, फिर मुझे मकान बना लेना है। व्हाट अबाउट रिटर्निंग टू द सोसाइटी, वॉट एवर वी आर गेटिंग गेनिंग फ्रॉम दिस सोसाइटी उसको रिटर्न भी करना है। देर आर सो मेनी वेज दैट वी कैन डिस्कस। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो है जिंदगी का पर्पस। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्यों हम जी रहे हैं। कुछ दिन पहले ऐसे काउंसलर टीचर्स भी हमारे पास में आते हैं बात करने के लिए कि मैम ये है ये है। एक दिन एक फैकल्टी ने मुझे आकर के बोला, मैम अब मेरे बेटे के 12th के एग्जाम हो रहे हैं, अब इसका एडमिशन हो जाएगा 2-3 महीने बाद किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, फिर ये चला जाएगा, फिर हम दोनों अकेले हैं। मुझे लगता है अब मुझे अपने लिए, अब मैं अपना पर्पस ढूंढती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि ये तो सब कर लिया इतने साल, अब मुझे करना है। चलो इट्स ऑल राइट कि अभी हमको 45-50 में रियलाइज तो हो गया कि अब मुझे क्या करना है, बट स्टिल द इग्नोरेंस इज कि अभी भी हम अपने बच्चों को उस बारे में नहीं अवेयर कर रहे। उसको तो अभी भी कहाँ भेजना है, हमें IIT में ही भेजना है, IIM में ही भेजना है, बिट्स में ही भेजना है, या XYZ और किसी इंस्टीट्यूट में भेजना है। जहां हम 50 ईयर्स में पहुंचे हैं, क्या हम अपने बच्चों को उस बारे में अवेयर एक राइट टाइम पर राइट एज में, जहां उनकी बॉडी भी फिजिकली फिट है, माइंड भी हेल्दी है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्या उस समय पर ये नहीं बता देना चाहिए था हमें उनको। कुछ दिन पहले, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जब हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने इंजीनियरिंग के 15-20 स्टूडेंट्स के साथ में बैठ के डिस्कस किया, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो आपके सामने शेयर कर रही हूँ, इट्स नॉट माय ओनली चर्निंग, दिस इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टीज एंड द मेंबर्स ऑफ द बीके फैमिली ऑल्सो। तो बच्चों ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि जब वो थॉट लैब में आते हैं एंड वहां पर उनको भोजन के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात पॉइंट रखा कि मैम ये पॉइंट होना चाहिए कि हमें फूड के बारे में कभी भी ना घर में बताया गया ना स्कूल सिस्टम में बताया गया कि कैसे हमारा अन्न हमारे मन के ऊपर इफेक्ट करता है। आज हम सब देखते होंगे अपने परिवारों में, आज से कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था, पर अभी हर जगह ऐसा है, कोई भी बात करेंगे, कुछ भी करेंगे, एवरी पर्सन इज मनी माइंडेड, है ना। ऐसा कोई भी बात होती है तो अरे कितने रुपए लगेंगे, इसको इतने में क्यों दिया, इससे इतने ले लेते, अच्छा वही तो है, तो उनको इतने ज्यादा बढ़ा के बता देते आप लोग। और एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ, एक स्टूडेंट्स की दुनिया में क्या चल रहा है आजकल। एक स्टूडेंट अगर अपने किसी फ्रेंड को 500 रुपीज एक महीने के लिए उधार देता है, तो वो कहता है अगले महीने मुझे 550 रुपए रिटर्न कर देना। सी द क्वालिटी ऑफ माइंड सेट आर स्टूडेंट्स आर हैविंग नाउ अ डेज। एंड इसका मूल कारण है जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि वो जो खाना खाते हैं सारे दिन ना, क्योंकि हॉस्टल्स में रहते हैं और कभी आज इस स्टॉल पर खाया, कभी उस ठेले पर खाया, कभी उस रेस्टोरेंट में खाया, एंड दे ऑल मेक फूड इन द कॉन्शियसनेस ऑफ अर्निंग मोर एंड मोर मनी। जब उस कॉन्शियसनेस से बना हुआ भोजन हम खाते हैं, तो हमारे अंदर भी कौन सी कॉन्शियसनेस जागृत होती है, मोर मनी मोर मनी मोर मनी। और वो बच्चे भी फिर कैसी बात करने लगते हैं, जो कि अभी सिर्फ 17, 18 और 19 साल के हैं, लेकिन उनको अभी लगता है कि फ्रेंड को पैसे दिए, एक महीने बाद देगा तो मुझे कुछ रिटर्न मिलना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में आप देखेंगे, यहाँ पर जो भी भोजन आप खा रहे हैं, ये सारा भोजन संस्था के अंदर ही हमारे अपने ही वही भाई बहने वो भोजन बनाते हैं, जो कि यहाँ पर नियमित रूप से ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं। परमात्मा की याद में ये भोजन बनाया जाता है और भोग लगा करके ये भोजन हम सभी को मिलता है। और आप सब आई बिलीव फील भी कर रहे होंगे पिछले 2 दिनों से, मन की खुशी, तन की खुशी, है ना, एवरीथिंग इज लाइट लाइट। भोजन में कोई लहसुन प्याज नहीं है, कोई हाई क्वालिटी या बहुत ज्यादा मिर्च मसाले नहीं है, उसके बावजूद भी उस खाने को खाकर हम सब अच्छा फील कर रहे हैं और अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं। सिर्फ अच्छा फील ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ बैठ के आप सबको बहुत अच्छे अच्छे विचार आते होंगे कि मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ऐसा करना है। बहुत सारा इफेक्ट उस भोजन का है। एक और नेक्स्ट बात आती है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। एक स्टोरी आती है, इसमें आप में से कईयों ने सुनी होगी स्टोरी। एक बार मदर टेरेसा कहीं से जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने देखा एक 92 ईयर्स ओल्ड लेडी डस्टबिन में पड़ी हुई थी, कचरे के ढेर में, और दर्द से और रोग से दुखी थी, परेशान थी। तो मदर टेरेसा उनको अपने आश्रम पर ले आई, वहां पर लोग उनकी सेवा करते रहे 4-5 दिन तक, पर कोई रिकवरी नहीं थी उनके अंदर। तो फिर मदर टेरेसा खुद ही उनको देखने के लिए आई, और जब उन्होंने देखा तो उनको समझ में आया कि उसके बेटों ने उसको घर से निकाल दिया था और बेटों के कारण उसकी ये स्थिति हो गई थी, एंड दैट लेडी वॉज नॉट हैप्पी विद द एटीट्यूड ऑफ हर सन्स। तो वो बहुत ही कंप्लेन कर रही थी, वो कुछ 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 अपने बच्चों के लिए बड़बड़ाती रहती थी हर समय पर, और वो बीमार थी कि मेरे को यहां कर दिया, मेरी ऐसी स्थिति कर दी। मदर टेरेसा आई, सिर्फ उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा और उसको बोला, तुम मां हो, उन्हें माफ कर दो। सिर्फ इतना बोला, और जो कहते हैं स्टोरी में, उसके बाद उसने जैसे ही इस बात को अपने अंदर समाया कि मैं मां हूं, मैं माफ कर सकती हूं, उसके बाद वो आत्मा वहां से चली गई। मृत्यु भी हमें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक हम किसी को माफ नहीं कर देंगे। तो ये माफ करना, नहीं तो ग्रजेस कितने सालों की हम बहुत सारे लोग भी पाल के बैठे होंगे ना, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वाई टू कीप होल्डिंग देम, फॉरगिव एंड फॉरगेट। आगे बढ़ना है मुझे, कोई उनमें से आगे नहीं बढ़ाने आने वाला है। और इन सब बातों की ही समझ ना होने के कारण हमें बहुत सारी बार ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, कंपैरिजन या लोनलीनेस की फीलिंग, आजकल बहुत ज्यादा एम्प्टीनेस की फीलिंग। स्टूडेंट कल भी एक स्टूडेंट का फोन आया, मैम अचानक से बहुत एंजाइटी हो रही है, कल से एग्जाम स्टार्ट है मंडे से और मुझे अचानक से बहुत एंजाइटी हो रही है। मैंने कहा क्यों पढ़ाई नहीं करी? कहता नहीं मैम, मेरे तो अभी तक एक भी बैक नहीं आई है, फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट था। तो मैंने कहा फिर इतनी चिंता क्यों हो रही है? नहीं मैम, वो किसी ने सिर्फ इतना, मेरा एक फ्रेंड था उसने इतना बोला कि फोर्थ सेम में ना पास होना बहुत मुश्किल है और अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए ना तो आगे प्लेसमेंट में दिक्कत हो जाएगी। अब आप सोचिए हमारे बच्चों का मन कितना कमजोर है, एक लाइन सुन करके जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसका ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, एकेडमिक्स में उसकी तैयारी भी अच्छी है, लेकिन उसकी मन की स्थिति एकदम से कितनी डाउन हो गई। उसने मुझे, क्योंकि मैं यहाँ थी, फोन नहीं अटेंड कर पाई, बार बार मैसेज करता रहा, फिर मैंने कहा अभी करती हूँ, फिर उसने मेरे को 3-4-5 कॉल कंटिन्यू करे, एंड जैसे ही मैंने देखा आई रिस्पॉन्डेड टू हिम। पर मुझे लगा कि कितनी छोटी सी बात है, मैंने जब बात करके पता करने की कोशिश की तो लगा कितनी छोटी सी बात है, एक फ्रेंड ने ही तो कहा है, ये फ्रेंड भी तो जैसे आप हो वैसा ही फ्रेंड है, वो कोई सुपरमैन थोड़े ही ना है। पर मन कितना कमजोर है, एक तरफ हम बात कर रहे हैं भारत विश्व गुरु बने और एक तरफ हमारा जो देश का फ्यूचर है उसकी मन की स्थिति कैसी है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर हमको सच में वहां तक जाना है तो वी हैव टू इंक्लूड सम ऑफ दीज लर्निंग्स इन आर डिग्री गिविंग प्रोसेस एज वेल। और एक छोटा सा वीडियो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी जिसमें वॉट वी आर डूइंग विद द स्टूडेंट्स एट आर कॉलेज, उसकी एक छोटी सी झलकी है, 3 मिनट्स का वीडियो है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू हैव अ लुक ऑन दैट वीडियो। थैंक यू। ओम शांति।
आज हम सब टेक्नोलॉजी और एकेडमिक्स में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस दौरान मेंटल वेलबींग अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। आज की एजुकेशन सिर्फ नॉलेज तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ, इमोशनल रेजिलियंस और इनर क्लैरिटी को भी सपोर्ट करनी चाहिए। इसी विजन के साथ JECRC जयपुर में एस्टेब्लिश हुई राजयोगा थॉट लैबोरेटरी, देश की पहली ऐसी यूनिक लैब जो स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रोफेशनल्स नहीं बल्कि बैलेंस्ड और इमोशनली स्ट्रांग इंडिविजुअल्स बनाने की दिशा में गाइड करती है। यहाँ स्टूडेंट्स सीखते हैं मेडिटेशन, एक साइंटिफिकली स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस जो उन्हें थॉट्स की एनर्जी, माइंड की पोटेंशियल और सुप्रीम सोर्स से कनेक्ट करने में सपोर्ट करता है। रिजल्ट, अ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ। गाइडेड मेडिटेशन सेशंस थॉट लैब की कोर स्ट्रेंथ हैं। सिंपल, एक्सपीरियंशियल और डीपली एंगेजिंग, ये स्टूडेंट्स को दोबारा खुद से जुड़ने में मदद करते हैं और उन्हें क्लैरिटी और मेंटल पीस प्रोवाइड करते हैं। थॉट लैब में थॉटफुली डिजाइन मेडिटेशन रूम है, एक ऐसी जगह जहां स्टूडेंट्स अपने हेक्टिक रूटीन से ब्रेक लेकर साइलेंस में बैठते हैं और पॉजिटिव एनर्जी से रिचार्ज होते हैं। यहाँ एक ब्यूटीफुल क्लासरूम है, विजडम हॉल, कलेक्टिव मेडिटेशन, एक्सपर्ट टॉक्स और इंटरैक्टिव सेशंस के लिए, और एक स्पिरिचुअल लाइब्रेरी जिसमें सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक्स का रिच कलेक्शन है। यहाँ एडवांस्ड डिवाइसेस भी हैं जैसे यूस गार्डा स्कैन और बायोवेल GTV, जिनके थ्रू स्टूडेंट्स की मेंटल और इमोशनल पैरामीटर्स की टेस्टिंग की जा सकती है। ये लैब सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि साइंटिफिकली वैलिडेटेड अप्रोच भी ऑफर करती है, एंश्योरिंग होलिस्टिक स्टूडेंट डेवलपमेंट। आज के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी नीड है एक सेफ एंड नॉन जजमेंटल स्पेस, जहां वो अपने थॉट्स फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। थॉट लैब में रेगुलर काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट होते हैं, जहां एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स स्टूडेंट को राइट गाइडेंस और इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ये इनिशिएटिव उनकी रेजिलियंस, क्लैरिटी और मेंटल वेलबींग को स्ट्रेंथन करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। लैब में रेगुलर एक्सपर्ट टॉक्स, इंटरैक्टिव इवेंट्स और एक्सपीरियंशियल सेशंस होते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स टेक्नो स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हैं, जहाँ वो इंजीनियरिंग नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी को ब्लेंड करके इनोवेटिव मॉडल्स क्रिएट करते हैं। ये अप्रोच सिर्फ क्रिएटिविटी को बूस्ट नहीं करता, बल्कि स्टूडेंट्स के अंदर वैल्यूज और एसेंशियल लाइफ स्किल्स को भी डीपली नर्चर करता है। राजयोगा थॉट लैब का अल्टीमेट एम है स्टूडेंट्स को एक वेल बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की तरफ लीड करना, जहां एकेडमिक एक्सलेंस के साथ इनर पीस और ट्रू हैप्पीनेस भी हो। ये स्पेस स्टूडेंट्स को इंस्पायर करती है नॉट जस्ट टू अर्न अ लिविंग बट टू डिस्कवर हाउ टू लिव विद पर्पस एंड फुलफिलमेंट। आज के समय में जब देश के युवा मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, थॉट लैब एक प्रैक्टिकल और इम्पैक्टफुल मॉडल के रूप में उभर कर आया है। ये इनिशिएटिव 2016 में JECRC जयपुर में शुरू हुआ था और तब से 1,00,000 से अधिक स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले चुके हैं। आज ये एक नेशनल रोल मॉडल बन चुका है, जो इंस्टीट्यूशंस को इंस्पायर करता है कि कैसे हम स्टूडेंट्स को सिर्फ एम्प्लॉयबल नहीं बल्कि ट्रूली एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स बना सकते हैं।
थैंक यू चित्राबेन, शी हैज नाइसली एक्सप्लेन अबाउट द माइंडसेट। दुनिया में सब कुछ सेट है, लेकिन माइंडसेट नहीं है तो सारा बिगड़ा हुआ है, सारा डल है। एंड इन ऑर्डर टू मेक दिस सेट, द मिसिंग लिंक इज टू नो हु एम आई, टू नो द सुप्रीम पावर, टू नो द टाइम साइकिल एंड टू नो द लॉ ऑफ कर्मा। चित्राबेन ने काफ़ी अच्छा बताया कि आज के युवकों में जो उनका लैंग्वेज है वो बहुत एब्यूजिव है। वेन एवर दे टॉक विद ईच अदर और इवन विद द प्रोफेसर्स, तो वो नेगेटिव वर्ड्स या बैड वर्ड्स नेचुरली उनमें निकलते हैं एंड दे फील दैट दिस इज द स्टाइल एंड द मेन ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस एब्यूजिव लैंग्वेज इज द फूड। एज शी राइटली सेड, एज द फूड सो इज द माइंड, एंड the best way to make our student again positive is the Rajyoga Thought Lab, which is a very unique project developed by Brahma Kumaris. तो मैं सिस्टर चित्रा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आपके सामने रखा। हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर KC पोरिया, वाइस चांसलर हेमचंद्र नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन, तो हम सभी इनका तालियों से स्वागत करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर किशोर कुमार पोरिया इज द वाइस चांसलर ऑफ हेमचंद्र नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी इन पाटन, हैविंग बीन अपॉइंटेड इन मार्च 2024 फॉर ए 5-year टर्म बाय गुजरात गवर्नमेंट। ही इज ए डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट इन फिजिक्स and previously served as the head of Department of Physics at Veer Narmad South Gujarat University. As Vice Chancellor, Professor Puria is responsible for overseeing the administrative and academic direction of the university, which serves multiple districts in North Gujarat. Established in 1986, Hemchandra North Gujarat University is a state-run institution accredited by NAC. He is actively involved in academic leadership and regularly participates in seminars, convocation and various academic events conducted under his guidance. So I would like to call Professor Dr. KC Puria ji to share his views on today's topic.
Honorable विरेश भाई, चित्रा देवी, ऑल डिस्टिंग्विश्ड स्पिरिचुअल लीडर्स, respected academicians and delegates and dear educated. Okay, so as the topic of this or the theme of this conference is very beautiful and important for today and the tomorrow also. When we are looking for the education beyond the degree, this is very much important for thinking about the integrating the spirituality, religion, and the science. So as we are today living in the new world where the artificial intelligence, machine learning, ChatGPT, WhatsApp and everything becomes the reality. At the same time, there is a huge development in the technology and we cannot abuse this technology. And our young mind and we all are accepting this technology. But at the same time, in what directions the science is moving, in what directions the technology is moving. This becomes a today's reality. The education has created the Bin Laden. The education has created the doctors who are saving the life of a human being, at the same time is ready to kill the human being. So by looking to the realities of today, I think this is the appropriate theme to think on this topic. And I congratulate and I am thankful to my sincere appreciations for the Brahma Kumaris for organizing this meaningful conference that seeks to redefine the purpose of education in the 21st century. At the same time, I am also sincerely commend the Brahma Kumaris for creating a platform where the education meets the spirituality and the knowledge meets the vision, the wisdom. So by looking to the activities carried out by these great organizations, Brahma Kumaris, they are doing a lot more for the society. They are doing a lot more for the education. And by keeping their contributions for the society, I think this topic is very, very relevant and need of the day. Today, we stand at a critical juncture where the degrees are increasing, but the wisdom is diminishing. The information is expanding. At the same time, inner clarity is declining. I'm working as a vice chancellor in one of the biggest university of my state. We are having the 764 colleges, affiliated colleges with my university. And the total number of the students are more than 80. So as the degrees are concerned, we are giving the degrees to the thousands and thousands young mind, intellectual minds. At the same time, what type of the role they will play for the society is a big challenge. So in this wisdom, I think this is to be needed to think in this direction. I am thankful for providing this and great opportunity to view my what concept thoughts on this education beyond the system. So as I mentioned that the degrees are increasing, but the wisdoms are diminishing. Information is expanding, but the inner clarity is declining. So due to this reason, our young and intellectual mind, they're having a huge database. They're having the huge information about the world. But either this world is appropriate to live in this world, this is a big question. The students of philosophy pursue the MA and PhD in the philosophy or the psychology. But their parents and the students himself or herself is facing the problems of the stress. So why this is happening? If the informations will give you the life, but how to live the life? The path of the life is not clear to our young mind. And due to this reason, the new world and the young minds are also facing a lot more problem. And due to this reason, I think we have to think the education beyond the degree, from the information to the transformations. We are living in the informations, we cannot deny the information, but at the same time, either these informations can transform the young mind to be the human being, to be the culture person, to help the society. This type of the concepts are also diminishing from this education. This is also a reality, and due to this reason, we have to think the education has traditionally focused on the knowledge acquisition and the employability. At the same time, the true education can definitely cultivate the emotional intelligence, ethical reasoning, inner stability, and the social responsibility. So this type of the topic are not, unfortunately, in our education systems. The students will avail the degree, but this degree does not provide the platform for the real life. So by raising the numbers of the degrees, and if the employability is not there, so what will happen to the society? I think in that directions we also have to think. At the same time, when we look for the modern education, discourage the increasing recognize that holistic development, this holistic development in terms of the physical, mental, emotional, and the spirituality. And this is the meaningful learning. And unfortunately, due to the different models of the education systems, this is not seeing that are not there in our traditional syllabus of the graduation studies and the post-graduation studies. So when we look for the education beyond the degree, it means that the shaping, not just a professional, but we have to think that either this degree can create a complete human being. So I think we have to think the education beyond the system. It means that it does not just create a professional manpower, but a manpower who is a complete human being. It reminds us that we must have to not merely the produce the degree holder, but we have to produce the thoughtful person, a responsible person, and the compensate human being. And this is the need of the day, and we look for the role of the spirituality. You can see that it is the inner dimensions of education. And these inner dimensions of education is missing from our modern education systems. We have to think in that way, that while the modern education has excelled in developing the intellect, it often neglects the inner dimensions of human life. Definitely, it will create the knowledge-based intellectuals, but at the same time, the inner dimensions of the human life is missing from this young mind or an intellectual mind. So we have to think in terms of the spirituality. It is not only about the rituals. It is about the self-awareness, consciousness, and the inner harmony. And these words are very much important for the intellectual persons who is a policy maker, who is a leader for the society, who is an educationist, who is a politician. If such type of the qualities are not visualized in the intellectual mind, it may create the chaos in the society. So when we are looking for the education should awaken the inner values such as the consciousness, peace, purity, love, truth, compensation, and the integrity. So I think as the Brahma Kumari's role is concerned, they are practicing like Raj Yoga meditation, and it enhances the mental clarity. It also enhances the emotional balance. It also create the creativity in the intellectuals, and it is also useful for the resilience in the human being or an intellectual person. At the same time, when we are looking for the spiritual awareness, it also leads to the ethical and the responsible decision-making intellectual. So this is also the need of the day, and we have to, provide such type of the information during their graduation studies, during their post-graduation studies, and even for the research. It rightly emphasized the national platform The spirituality unites the humanity and it creates the sustainable and the ethical systems. Thus, the spirituality transforms the educations from the external achievement to the internal fulfillment. For the educator, spirituality is not an addition. It is the foundation of a character building. So these kinds of, if we look for the national education policy, such type of the topics are also incorporated in our education systems. But in real practice, such type of the topics are not transferred to the colleges, not transferred to the university as well as in our education systems. So when we are looking for the academic discussion, their religion and the spiritualities are also often misunderstood. We are considering the religion, it provides the structure, it provides the traditions, and it provides the modern codes. But when we are looking for the spirituality provides the experience, introspections, and the universal values. So, if the true education must transcend the divisions, and it promotes the interfaith harmony, it promotes the universal ethics, it respects for the diversity. The philosophy of the Brahma Kumaris itself emphasizes going beyond the labels of caste, creed, and the nationality and move towards the soul consciousness. And this is the human identity. This education must not create the division, but it must build the unity, though deeper understanding of the religion and the spirituality. At the same time, we can take a proud, as the India is concerned, our great country having the so many castes, so many religious and everything, but the unity and to move with a unit direction is also the property and the characteristics of the great Bharat. So when we are looking for the science and spirituality, there sometimes the educations suggest that the science and spirituality are opposite to the one another. But in real sense, it is not opposite to one another, but it is the complements of one to the another. And due to this reason, now we have to learn this topic. We have to learn the subject, what type of the science is there. You can see that when we are looking for the philosophy or the psychology, now the neuroscience is there, and the knowledge of the neuroscience, the arts faculty students do not have sometimes. So we have to, what I can say, make a convergence of all the sciences, where science does not mean only the science, the arts is also there, the commerce is also there, the management is also there. And if we look for the convergence of all these subjects and we try to understand all the subjects in a scientific manner, I think we can achieve a great. At the same time, when we look for the science explains how the world works and explores the external world. But when we look for the spirituality explains why we exist and why it explores the internal world. So the science, if it will develop the external world, but the internal world does not give the happiness, this type of the life not having any meaning, these are not the meaningful life to live. So at the same time, for a long time, the science and spirituality were seen in the contradictory. Today, they are increasingly recognized the complementary dimensions of the truth. The final goal of the spirituality and the religious were to reach at the Om Shanti. At the same time, the science also believes that we are planning to live a happy life in which the every human being can live happily. So the goal of the science and spiritualities are in the same direction, but their path is a little bit different. And due to this reason, we have to understand the science with the concepts of spirituality. And if we do so, I think the educations have some meaningful output. For a long time, when we look for the science, it will improve the mental health and the stress management. It enhances the cognitive performance and the creativity, and it also promotes the ethical scientific inquiry. The emerging frontiers of the research now includes the consciousness, cognizance, and the compensation as the essential components of the knowledge. So now the science has also started to think in this direction. There are many laboratories throughout the globe. They are thinking that what we mean by the soul, what we mean by the consciousness, what we mean by the philosophy, what are the goal of the life, what is life and everything. So such type of the questions are also there in the regimes of the science, and the scientists are also conscious. They are also looking with the consciousness and the educations with the inner clarity. So when we all are the educator, so we have to work not as an instructor, we have to work as an inspirer for our young mind. We have to be we are the information provider. Okay, as the teaching professions is concerned, sometimes we are considering the teacher as an information provider. Okay, but if this was there in the long before. Now we can work as a life mentor. We can work as a mentors of the values by using the great knowledge, which is provided by the Brahma Kumaris and such like institutions. We can be considered as a subject experts. Now we are not only the subject experts, we are the value architects. We are the value architects. If we are maintaining the values of the life, we can also propagate these values in our students. We can be an architect of the characters. We can be a role model for the young mind. We can be an architect of the character. So teachers are to be considered as a nation builder, but at the same time, now we have to work as a catalyst for the transformations. We have to work as a catalyst for the transformations. The education wing of the Brahma Kumaris rightly emphasizing empowering the teacher to become the role models who inspire through their own inner strength and the values. A teacher who is internally peaceful, who is ethically grounded, and who is spiritually aware, he can definitely work as a life mentor, value architect, or the nation builder. So when we are looking for the education, what we can nurture, the curiosity with compensation. We have to nurture the curiosity with compensation. We have to knowledge with the character. We have to skill with the sensitivity. An educator who embodies the inner balance and the ethical strength becomes a living example of the education beyond the degree. So what are the ways forward for integrating the three dimensions? And this is we are living in the new education paradigm. NEP is already implemented, and some of the good fruits are also the societies are visualizing, but they are not enjoying such fruits. Okay, and for these purposes, we have to think the truly to achieve the education beyond the degree. To achieve this goal, we must have to integrate the science for knowledge and the innovation. We have to think the spirituality for the wisdom and the inner balance. We have to think the ethical values as a rooted of the religion for the social harmony. We have to think the NEP 2020 framework for the structure of structural transformation. We have to think the Indian knowledge systems for the culture and the philosophical depth. We have to think the spiritual practices. We have to perform the spiritual practices for the inner development. We have to use the scientific approach for the innovations and the progress. These integrations will create an individual or the generations who are competent at the compassionate. They are intelligent, at the same time they are also humble. They are skilled, at the same time they are also social responsible, and they are also globally competent. They are competent. So when we are looking for these new education policies and the new education regime, they are culturally rooted, they are spiritually aware, and they are scientifically driven. So when we look for the education, we are in the paradigm where the transforming as education is the need of the day. We have to think for the education as an inner awakening. We have to use the education as a tool, just like another scientific tools which we are using for our day-to-day life. So education can be a tool for the inner awakening, and the education is not the feeling of a mind, but the awakening of a soul. And I think this is also the goal of the Brahma Kumaris. Brahma Kumaris is doing a lot more work that what type of the human being is to be required for the society and how that kind of the shapes are possible for the society. Education is not merely here for the livelihood, it is for the life. If the education systems can ignite the inner consciousness along with the intellectual excellence, we will not provide only the produce, the successful professional, but also the responsible citizen and the enlightened human beings. If we succeed in aligning the degree with the dignity, if we succeed to align the degree with the dignity, knowledge with the wisdom, and the science with the spirituality, we will create not just the educated individuals, but definitely we can create an enlightened human beings. Let us commit ourselves to creating an education system that does not merely give the degree, but it gives the direction, it gives the purpose of life, it gives the meaning of the life. These are the need of the day, these are the need of the intellectual and the young mind for our country. Let this conference be a stepping stone towards the building an education system that truly goes beyond the degree and towards the self-realization and towards the social harmony and towards the national development. And if we do educations in this way, I think 2047 is waiting for us. And again, you can see now India is transforming into the Bharat. Ethical values, value-based educations, emotions, to learn about the neuroscience, to learn about the stress in a scientific manner can be a today, tomorrow's reality, and we can contribute a lot for our country. Thank you for providing me the great opportunity to share my knowledge to all the dignified persons. Thank you.
Thank you very much, sir, for your clear ideas. You rightly said that today's need is inner technology. We are in the age of information technology, but the need is inner technology, and that is spirituality. As it is rightly said, science is lame without spirituality, and spirituality is blind without science. So thank you very much, sir, for expressing your views on this topic. Now I'd like to call Sister Nikita, Brahma Kumari sister, to felicitate our guest of honor, Professor Dr. K.C. Poria ji, and I request Chitra Ben to do the honor. Also, I'd like to call Dr. J.J. Vora, former Vice Chancellor of Hemchandra, North Gujarat University, to please come on stage. And I request Chitra Ben to do the honors by felicitating Dr. J.G. Vora, former Vice Chancellor of Hemchandra North Gujarat University.